आहान ने आंखों ही आंखों में ध्रुव को देखकर ये कहा था, मानो वो सब कहना चाह रहा हो, एक बार गाड़ी रोकने दे, तुझे तो मैं तब बताता हूँ। आहान के इशारों का मतलब समझकर ध्रुव जोरों से हंसने लगा। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौड़ एक घंटे बाद प्रियंका के साथ गांव की ओर रवाना हो चुका था। कहीं ना कहीं अबीर आस्था और अरमान को इस बात का एहसास कराना चाहता था कि वो अब आस्था से पीछे हट चुका है और उसका इरादा अब आस्था के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता रखने का नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रियंका से शादी करने वाला है। आस्था की करीब जाने के लिए उसे आस्था के किसी न किसी रिश्तेदार का सहारा लेना ही था, इसीलिए उसने प्रियंका को चुना था, क्योंकि वो प्रियंका के बारे में अच्छी तरह से सारी बातें जानता था कि प्रियंका एक नंबर की धोखेबाज और कैरेक्टरलेस लड़की है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ कितनी बार सो चुकी है। ये सारी बातें अबीर को अच्छी तरह से पता थीं। फिलहाल वो प्रियंका को आस्था और अरमान के बीच में दरार पैदा करने के लिए प्रियंका का इस्तेमाल करना चाहता था, इसीलिए अब जल्दी ही वो अपनी शानदार गाड़ी में बैठकर प्रियंका के साथ उसके गांव की ओर रवाना हो चुका था। दूसरी ओर वहां कोई और भी था जो इस वक्त गांव में जा रहा था। वो कोई और नहीं, वो वंशिका थी, जिसने बचपन में अरमान का खौफनाक रूप देखा था। बचपन में अरमान ने 15 साल के मानसिक रूप से विकलांग बच्चे की जान ली थी। वो बच्चा वंशिका का भाई था और वंशिका ने अरमान को अपनी आंखों के सामने अपने भाई का खून करते हुए देखा था। तभी से वो अरमान से नफरत करने लगी थी, क्योंकि जिस वक्त अरमान 15 साल के उसके भाई की जान ले रहा था, उस वक्त डॉक्टर राजवीर जिंदल ने अरमान को डेविल किंग का नाम दिया था। इसीलिए वंशिका धीरे धीरे जैसे जैसे जवान होने लगी, उसके मन में अरमान से बदला लेने का इरादा पनपने लगा और धीरे धीरे उसने दिन रात रिसर्च करके इस बात का पता लगा लिया था कि डेविल किंग कोई और नहीं बल्कि इस शहर का सबसे हैंडसम चेहरा अरमान सिंघानिया है। तब से वंशिका ने फैसला ले लिया था कि वो अब हर हाल में अरमान की जान लेगी और अपने भाई की मौत का बदला लेगी। इसीलिए अरमान को मारने के इरादे से वो शॉपिंग मॉल में भी गई थी, लेकिन उस वक्त नानी माँ के अपहरण की वजह से वंशिका का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था, क्योंकि जिस वक्त वंशिका ने मॉल में अरमान को देखा था, उस वक्त आस्था उसके साथ नहीं थी। आस्था उस वक्त अविनाश के साथ राजवीर जिंदल का पीछा कर रही थी, तो इसीलिए वंशिका को ये नहीं पता था कि आस्था अरमान की पत्नी है। वेल, मॉल में तो वंशिका का प्लान फ्लॉप हो चुका था, लेकिन वो अरमान की जान लेने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने अब सिंघानिया मेंशन पर नजर रखना शुरू कर दिया था। और जब उसे इस बात का पता चला कि सिंघानिया मेंशन के लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, वो भी काफी लंबी ट्रिप पर, तो इसीलिए वंशिका ने अब उन लोगों का पीछा करने का फैसला कर लिया था। वंशिका अपनी एक्टिवा यानी स्कूटी पर थी और 4 से 5 घंटे का सफर वो अपनी स्कूटी से ही तय करने वाली थी। अब जैसे ही सब लोग खाना खाने के लिए एक ढाबे पर रुके तो वंशिका भी रुक गई थी। वंशिका ने एक लाल हरे रंग का चूड़ीदार सलवार कमीज पहन रखा था। हाथ भर के उसने चूड़ियां पहनी हुई थी। कानों में उसके लाल रंग के मोतियों के बड़े खूबसूरत झुमके थे। एक छोटी सी बिंदी लगा रखी थी। वंशिका उसमें बड़ी ही प्यारी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। प्रॉपर इंडियन वेयर में वंशिका बड़ी प्यारी लग रही थी। अब जैसे ही सब लोग खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर रुके तो वंशिका भी रुक गई थी। हालांकि वो कोई खास बड़ा रेस्टोरेंट नहीं था, सड़क के किनारे एक ढाबा टाइप का बना हुआ था। अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे। इस जगह को देखकर वो ध्रुव से एतराज जताते हुए बोला, क्या तुम्हें यही जगह मिली थी खाना खाने के लिए? क्या आस्था यहाँ खाना खाएगी? यहाँ का खाना कितना अनहाइजीनिक होगा, क्या तुम्हें इस बात के बारे में नहीं पता है? लेकिन अब तक आस्था की आंखें खुल चुकी थी। वो चहकते हुए बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप अरमान जी, यहाँ का खाना एकदम बेस्ट होता है। अरे आपको नहीं पता है, आप चलिए, बहुत मजा आएगा खाना खाने में। ये बोलकर आस्था ने अरमान को ले जाकर सीधा चारपाई पर ले आई थी, क्योंकि वहां पर टेबल कुर्सी की जगह चारपाई बिछी हुई थी और दो दो चारपाइयों के बीच में छोटे छोटे टेबल लगी हुई थी और वहीं पर खाना शुरू किया जाता था। सभी लोग अलग अलग चारपाइयों पर बैठ गए थे और सिक्योरिटी गार्ड ने चारों तरफ से अच्छी तरह से उस स्पेस को घेर लिया था, क्योंकि अरमान ने सख्त निर्देश दे दिए थे कि जब तक कि वो लोग यहाँ खाना खाकर यहाँ से नहीं निकल जाते, कोई भी आदमी यहाँ नहीं आना चाहिए और नहीं खाना खा पाएगा और नहीं किसी को यहाँ रुकने की इजाजत थी। कहीं ना कहीं अरमान का इस तरह का बर्ताव सभी लोगों को थोड़ा सा इरिटेट भी कर रहा था, लेकिन अब किसी ने उसे नहीं टोका था, क्योंकि 2 बार आस्था के साथ हादसा हो चुका था। ऊपर से नानी माँ की भी किडनैपिंग ऑलमोस्ट हो ही गई थी। वो तो नानी माँ अपनी समझदारी से बच गई थी, तो इसीलिए कोई भी अरमान को मना नहीं कर रहा था कि वो इस तरह की सिक्योरिटी चिंता ना करे, इस तरह की सिक्योरिटी ना करे। वेल, अब ढाबे वालों के भी हाथ पांव पूरी तरह से फूल गए थे, क्योंकि कितना बड़ा आदमी वहां आया है, क्योंकि अरमान सिंघानिया को देखकर उसका पावरफुल और उसकी पर्सनालिटी सब जाहिर कर देती थी क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंसान तो था नहीं। वहीं अब जैसे ही वंशिका ने स्कूटी रोकी, अब क्योंकि वंशिका भी लगातार 2-2.5 घंटे से सफर कर रही थी, ऊपर से वो स्कूटी पर थी, 2 बार उसने अपनी स्कूटी में पेट्रोल की टंकी भी फुल करवाई थी, मन मन में सोच भी रही थी कि आखिरकार ये लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन वंशिका ने भी फैसला ले लिया था कि ये लोग जहाँ भी जाएंगे तो भी मैं इन लोगों के साथ ही जाऊंगी। उसे भी क्योंकि अब भूख लगी थी तो उसने देखा कि ढाबे की एंट्री वाले रास्ते पर ऑलरेडी कितने सारे गार्ड्स खड़े हुए थे। वंशिका ने अपनी स्कूटी साइड में पार्क की थी। अरमान के सामने वो आसानी से जा सकती थी क्योंकि अरमान ने उसे नहीं देखा था, तो किसी को उस पर कोई शक नहीं होने वाला था कि आखिरकार इस लड़की का यहाँ आने का क्या मकसद हो सकता है। और वंशिका सोच रही थी कि अगर उसे मौका मिल जाता है तो यही ढाबे पर वो अरमान को खत्म करके वापस यहीं से शहर लौट जाएगी। तो ये सोचते हुए अब जैसे वंशिका अंदर जाने लगी, गार्ड्स उसके सामने आ गए और धीरे से बोले, सॉरी मैडम, आप कौन हैं और आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकती हैं। अब वंशिका भड़क गई और गुस्से से बोली, मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती हूँ और ये क्या तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है? ये एक ढाबा है जो नॉर्मली आम लोगों के लिए खुला हुआ है, तो मैं यहाँ खाना क्यों नहीं खा सकती हूँ? मैं जा रही हूँ अंदर। ये बोलकर वंशिका अंदर जाने लगी, लेकिन गार्ड्स एक बार फिर उसके सामने आ गए और चेतावनी देते हुए बोले, सॉरी मैडम, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जब तक हमारे मालिक लोग खाना खा रहे हैं तब तक कोई भी बाहर की दूसरी पब्लिक अंदर नहीं जा सकती है। अब तो वंशिका का दिमाग ठनक गया था। वो तो वैसे भी अरमान से बेहद नफरत करती थी, अब इस तरह से गार्ड्स के रोकने पर उसका पारा चढ़ गया था और वो अपनी आवाज तेज करके तमतमाते हुए बोली, अरे क्या तुम्हारे मालिक लोगों को ही सिर्फ भूख लगती है? तुम्हारे मालिक की भूख भूख और किसी की भूख कोई मायने नहीं रखती है? ये बोलकर वंशिका ऑलमोस्ट चिल्ला रही थी। अब वंशिका की आवाज अंदर बैठे हुए सभी लोगों के कानों में सुनाई पड़ गई थी और सब हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तभी ध्रुव तुरंत खड़ा हुआ और शांत स्वर में बोला, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं देख कर आता हूँ कौन है। ये बोलकर ध्रुव अब बाहर की तरफ जाने लगा। तब तक आस्था और अरमान के सामने जल्दी ही ढाबे वालों ने एक बड़ी सी थाली रख दी। उसमें थोड़े से चावल, 3-4 सब्जियां, रायता, सलाद, पानी और एक लस्सी का भरा हुआ ग्लास, ये सब कुछ रखा हुआ था।
अब अरमान को खाना देखकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि इस तरह का इतना सारा खाना एक साथ और इतना बड़ा लस्सी का ग्लास देखकर उसे अजीब सा लग रहा था। वहीं आस्था तो खिल उठी थी, वो तो न जाने ऐसा खाना कब से खाना चाहती थी। थोड़ी सी सूखी सब्जी, पनीर की सब्जी, रायता, चावल, दाल, छोले की सब्जी, इतना ही नहीं थोड़ी राजमा की सब्जी भी वहां मौजूद थी। आस्था के तो ये सब देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया था और फटाफट से उसने राजमा, पनीर की सब्जी, छोले, थोड़ी सी दाल, इतना ही नहीं थोड़ा सा रायता एक साथ ही चावलों पर डाल दिया था और फटाफट से उसने अपने हाथों से खाना शुरू कर दिया था। अब तो अरमान उसे देखकर इरिटेट हो गया था और मुंह बनाते हुए बोला, आस्था ये क्या कर रही हो? ये तुम अपने हाथों से खाना क्यों खा रही हो? इट्स जस्ट इरिटेटिंग। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था जो कि चटकारे लेकर खाना खा रही थी वो उसकी ओर देखकर खिलखिलाती आवाज में बोली, अरमान जी जब तक सारी सब्जियों को चावल के ऊपर ना डाला जाए और ऊपर से रायता ना डाला जाए तब तक तो खाना खाने का मजा ही नहीं आता है। और चम्मच से क्या खाक मजा आता है? अरे जो स्वाद हाथ से खाने में है वो चम्मच से कहाँ आएगा? अरे मैं तो कहती हूँ एक बार आप भी खाकर देखिए, फिर कितना मजा आएगा। वहीं रश्मि को भी आस्था की तरह खाना खाने की सूची और उसने भी उसी तरह से खाना खाना शुरू कर दिया था। वहीं राधिका भी इसी तरह से खाना खाने लगी थी। रौनक इस वक्त नानी माँ के पास बैठी हुई थी और नानी माँ ने रौनक को अपने हाथ से खाना खिलाना शुरू कर दिया था और रौनक ने बिना किसी नुकसान के खाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अब सब लड़के लोग वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे कि वो इस तरह से खाना खा सकें। वो तो सब घूर कर बारी बारी से उन सब लड़कियों को देख रहे थे, क्योंकि सभी लेडीज़ ने आस्था को देखा देख उसी तरह से खाना खाना शुरू कर दिया था और सब लड़कों को अब अजीब सा लग रहा था। वहीं आकाश तो मुंह बनाते हुए बोला, रश्मि चलो ठीक है, आस्था भाभी तो गांव से हैं, उनकी बात समझ में आती है कि वो इस तरह से खाना खा रही हैं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह से खाना क्यों खा रही हो? इट्स इरिटेटिंग। अब जैसे ही आकाश ने ये कहा, रश्मि मुंह बनाते हुए बोली, जस्ट शट अप, अगर मैं आस्था को ये बात बता दूं कि तुम उसे गवार बोल रहे हो तो तुम जानती हो वो क्या करेंगी तुम्हारे साथ। तब आकाश जल्दी से बोला, अरे नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा मत करना प्लीज, लेकिन तुम्हारा इस तरह से खाना खाना मुझे बड़ा ही बैड लग रहा है। तब रश्मि बोली, अच्छा बैड लग रहा है, एक बार मुंह खोलो। तब आकाश हैरान हो गया कि मेरा मुंह खोलने के लिए क्यों कह रही है। तब आकाश हैरानी से बोला, लेकिन मैं मुंह क्यों खोलूं? रश्मि ने फिर से कहा, मैंने कहा ना मुंह खोलो। तब आकाश ने ज्यादा बात ना करते हुए तुरंत अपना मुंह खोल दिया था और तुरंत रश्मि ने अपने हाथ में जो वो खाना खा रही थी उसने वो खाना तुरंत आकाश के मुंह में डाल दिया था। अब आकाश खाना खाने पर मजबूर हो गया था और रश्मि को घूरने लगा, लेकिन अगले ही पल उसे वाकई उसे खाने का स्वाद काफी अच्छा लगा था। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई थी।